तो आज हम उसी गायत्री मंत्र के अर्थों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मिलकर एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का नाम गायत्री इसलिए है क्योंकि ये गायत्री छंद में लिखा हुआ है। छंद मतलब मीटर्स होते हैं, अक्षरों की एक खास विधि जिससे हम उसको गाने लायक बनाते हैं। और इस मंत्र के कारण गायत्री छंद भी प्रसिद्ध हुआ। कभी कभी कुछ लोग इसे सावित्री मंत्र बोलते हैं क्योंकि इसकी देवता सविता है, सविता की स्तुति और प्रार्थना की गई है। ये मंत्र वैसे हमारे भारतीय परंपरा में, वैदिक संस्कृति में जितने भी ऋषि मुनि वेदों से लेकर के आधुनिक शास्त्रों तक हर किसी कोई इसी के गुणगान करता है, इसको जपने के लिए प्रेरणा देता है। क्या फायदा है? तो ऋषि मुनियों के जो अनुभव है, जो साधुओं के, ऋषियों के, मुनियों के, संतों का जो अनुभव है, वही उसका प्रमाण है कि ये कैसे आपके और हमारे जीवन में, इस जीवन में और पारलौकिक जीवन में परिवर्तन लाता है। आज हम उस पर बात नहीं करेंगे कि गायत्री मंत्र का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गायत्री मंत्र। हम आज चर्चा करेंगे इसके अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र में तीन अलग अलग विभाग है, डिवीजन है। ये तीन अलग अलग डिवीजन को मिला के एक मंत्र है। एक है ओम जो प्रणव है, दूसरी को कहते हैं व्याहृति जो भूर्भुवः स्वः है। गायत्री मंत्र का जो मंत्र का हिस्सा है, मंत्र की पाठ है, वो तत्सवितुर से शुरू होता है। तीनों वेदों में अनेक बार इसका बार बार उल्लेख आता है। कभी केवल मंत्र के रूप में तत्सवितुर वरेण्यम, कभी पूरे व्याहृति के साथ इसकी चर्चा आती है। ओम को प्रणव इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्र का अर्थ होता है अच्छी तरह, और नू धातु से बना जिसका मतलब होता है स्तुति करना। जिस शब्द से, अक्षर से या जिस सिलेबल से किसी के साथ आप जब डायलॉग करते हैं, किसी को आप एड्रेस करते हैं, किसी के बाद किसी को आप प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, तो जो सबसे बढ़िया साधन है, जो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है ईश्वर की एड्रेस करने की, उसको बुलाने की, उसके साथ संवाद करने की, वो ओमकार है। ऐसा क्यों? वो वैसे ही है जैसे कोई राकेश नाम के आदमी को आप राकेश बुलाएं तभी वो आपको जवाब देता है, तभी वो सुनता है। ऐसा नहीं कि राकेश नाम का आदमी आदमी भी है, आप इसको आदमी भी बोल सकते हो, आदमी इधर आओ, पर करोड़ों लोग होते हैं तो वो नहीं सुनेगा। आप इसको इंसान भी बोल सकते हो, आप उसे प्राणी मतलब लिविंग बींग भी बोल सकते हो, पर वो जो आपको सुनता है, आपको जवाब देता है, उसके अंदर जो रिएक्शन होता है जब आप उसके नाम लेते हो, वो नाम जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, किसी एक घर में या हॉल में 100 लोग हो, 200 लोग हो, और अनजाने में कोई लॉबी में चिल्लाए रमेश करके चिल्लाने लगे, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका नाम रमेश होगा वही उसी के अंदर जागरूकता आएगी, अवेयरनेस उसी के अंदर आएगी, वही ध्यान से सुनेगा। अल्दो लॉबी में जो बुला रहा है वो इस रमेश को नहीं बुला रहा है, वो हो सकता है रमेश विष्णु को बुला रहा हो, रमेश उसके बेटे को बुला रहा हो, रमेश उसके भाई को बुला रहा हो, आपको नहीं बुला रहा है, पर आपका ध्यान उसके तरफ जाएगा। नाम जब आप लेते हैं वो नाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति रिएक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह ओम परमेश्वर का नाम है, जब आप ओम बोलते हैं तो आप ईश्वर को बोलते हैं। जैसे मैं आपका नाम लेता हूं तो मैं आपको बोलता हूं, मैं आपकी नाम लेकर चार गालियां दूं तो आप गुस्से में लाल पीला होते हैं, मैं कहूंगा मैंने आपको नहीं कहा, मैंने तो ये कहा रमेश, इसको गालियां दी, तो तब भी आप थोड़े मानने वाले हैं। मैं रमेश बोल के 100 तारीफें करूं तो आपको खुशी होगी, मैं कहूंगा मैं आपको नहीं कर रहा था तो मैं रमेश ये 3 लेटर को तारीफ कर रहा था, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई वर्ड बोलते हैं उसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है रिएक्शन उसी का आता है, इसको हम नाम कहते हैं। इसी तरह ईश्वर का जो नाम हमारे ऋषियों ने मुनियों ने शास्त्रों में वेदांत वेदों में जो बताया गया ओम बताया गया, वैसे आपके और हमारे नाम तो नाम भी है, पर हमारा नाम रैंडमली हमारे मां बाप ने दे दिया, कभी उनको शब्द अच्छा लगा, मीनिंग अच्छा लगा, सुनने में साउंड अच्छा लगा तो नाम दे दिया। उस नाम के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है एक्चुअली, मतलब नाम का जो मीनिंग है उस मीनिंग के साथ मेरे कैरेक्टर का कोई लेन देन नहीं है। किसी का नाम हीरामल है तो जरूरी नहीं कि वो हीरा बेचता हो हीरा रखता हो, किसी का नाम कमल लोचन है, लोचन कहते हैं आंख को, जिसकी आंख कमल जैसा बड़े बड़े खूबसूरत हो, बहुत सारे अंधे मिलेंगे जिनका नाम कमल लोचन है ना। किसी का नाम करोड़ी मल है, हो सकता है भीख मांगता हो पर करोड़ नाम उसका करोड़ों में पड़ा है। हमारा नाम हमारे मां बाप को जैसा मिला जहां मिला जैसी बैकग्राउंड के हैं वैसे नाम दे दिया, उसके साथ हमारे कैरेक्टर का कोई लेन देन नहीं होता है। किसी किसी का कोई इंसिडेंटली लग जाता है तो वो कोई जनरल रूल नहीं होता है। इसी तरह ईश्वर के लिए जो पर जो ईश्वर के लिए जो नाम दिया गया ओम, वो एक मीनिंगफुल नाम है जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को डिफाइन करता है। वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले भी हम काफी बार ओम की चर्चा कर चुके हैं, ओम का क्या मतलब है। सरल भाषा में और संक्षिप्त में कहें, इन्हें जिस्ट अगर हम कहें, वो ईश्वर जो सृष्टि का पालन का और संहार का स्वामी है, द गॉड द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, लॉर्ड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड लॉर्ड ऑफ डिसोल्यूशन। संक्षिप्त में अगर आपको ओम की बातें कहें, अगर आपको ओम वैसे सीरियसली समझना है तो थर्सडे को आजकल मांडुक्य उपनिषद क्लास चलता है 7 से 8 बजे तक, तो आप आइए, वहां ओम की ही व्याख्या की चर्चा चल रही है। ओम को प्रणव इसीलिए कहा गया क्योंकि ये अप्रोप्रिएट नाम है ईश्वर का। जब आप ओम बोल के कुछ करते हैं तो वो ईश्वर को ही आप संबोधित करते हैं। आप कहेंगे हमारे पास तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कोई कहेगा कि मैं उसे विष्णु बोलता हूं तो विष्णु का मतलब होता है जो फैला हुआ है, जो सब जगह, समथिंग विच इज परवेडिंग एवरीवेयर। आप कहेंगे हम उसको शिव बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला। अब कहेंगे हम उसे गणेश बोलते हैं, गणेश का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ मास, पूरे फेमिनिटी का मास का जो लीडर है उसको गणेश कहते हैं। आप किसी भी नाम से आपको उसको बोलते हैं, आप उसके एक क्वालिटी को, एक जॉब को, एक एक्टिविटी को आप एड्रेस करते हो। जैसे आपका नाम कुछ भी हो, आपको पब्लिक में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लोग बुलाते होंगे, आपके बच्चे आपको पापा या मम्मी या डैड या मामा जो भी बुलाते होंगे, आपके छोटे भाई आप बहन आपको और कुछ बुलाते होंगे, जरूरी नहीं कि नाम लेकर बुलाते हो, कोई निक नेम लेकर बुलाते होंगे, आपके माँ बाप आपको कुछ और बुलाते होंगे, आप जहाँ काम करते हो आपके ऊपर जो बॉस है वो आपको और कुछ बुलाता होगा, आपके जो सबोर्डिनेट है वो आपको और किसी नाम से जानते होंगे, आप कहीं वॉलंटियरिंग करते हो तो ये आदमी एक ही है, व्यक्ति एक ही है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। आप किसी के मामी है मामा है, किसी के चाचा या चाची है, किसी के पापा या मामा है, किसी के टीचर है, तो अलग अलग रूप से आप लोग को बुलाते हैं। वो नाम नाम नहीं है, वो आपका एडजेक्टिव है, वो आपके किसी एक्टिविटी को, आपके किसी क्वालिटी को डिफाइन करता है। पर आपका अपना एक नाम है जो सर्टिफाइड है, जिससे आप ही आइडेंटिफाई होते हो और कोई नहीं हो सकता है। इसी तरह जितने भी हमारे यहां हजारों लाखों शब्द हैं देवताओं के, ईश्वर के, वो सब ईश्वर के किसी ना किसी गुण को, क्वालिटी को, उसके धर्म को, उसके नेचर को, उसके कर्मों को, उसके एक्टिविटीज को डिफाइन करता है। पर उसका एक नाम है हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, और नाम कोई रैंडमली नहीं है, सोचा समझा थॉटफुली दिया गया नाम है, जो ईश्वर के ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन भी करता है, उसके सारे गुण कर्म स्वभाव उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ईश्वर को बुलाने का नाम होता है। इसीलिए ओमकार को प्रणव कहते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर की स्तुति सबसे बेहतर तरीके से हो सके। इसलिए हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, धर्मशास्त्रों में बार बार कहता है कि कुछ भी करने से पहले ओम लो, पहले जमाने में लोग हर बात पर ओम बोलते थे, खाने से पहले, पढ़ने से पहले, काम मंत्र बोलने से पहले, हर चीज में ओम बोलते थे, इसी के साथ अपने आप को ईश्वर को जोड़ने की कोशिश करते थे। दूसरी इस गायत्री मंत्र का जो दूसरा पाठ है उसे कहते हैं व्याहृति, भूर्भुवस्वः। भूर्भुवस्वः को व्याहृति इसीलिए कहते हैं क्योंकि विशेष रूप से आहरण किया गया है, अलग अलग वेदों से अच्छी तरह से कलेक्ट किया गया। छांदोग्य उपनिषद में एक छोटी सी कहानी आती है आख्यायिका। आख्यायिका का मतलब ऐसी स्टोरी जो कोई मैसेज देने के लिए होता है, जिस किसी चीज को समझाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए जब आप किसी स्टोरी की सहारा लेते हैं, वो स्टोरी रियल भी हो सकता है, फिक्शन भी हो सकता है, पर आपका उद्देश्य स्टोरी कहना नहीं, स्टोरी के द्वारा कुछ बातें बताने की है, उसे हम आख्यायिका व आख्यान कहते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में एक आख्यान आता है कि ईश्वर ने जब समस्त संसार की सृष्टि की, जो पूरे यूनिवर्स की जो बनाया, तो सोचा कि मैं उसका एक हैंडबुक बनाऊं, एक जिस्ट बनाऊं जिसमें ये सब कुछ हो, संसार के बारे में सारी जानकारियां हो, संसार क्या है कैसा है सब कुछ हो, उसके अंदर मिले, जैसे आपके पास मैनुअल होता है, किसी भी चीज आप लाते हैं बनाते हैं, कोई भी कंपनी बनाता है तो साथ में एक मैनुअल देता है इसको समझने के लिए। तो उपनिषद में कहानी आती है कि ईश्वर ने सोचा कि मैं इसको सार रूप में, जिष्ट रूप में निचोड़ करके मैनुअल रूप में रखूं, तो उन्होंने तीनों लोगों को, ये यूनिवर्स तीनों भाग में बंटा हुआ है, इन तीनों लोगों को निचोड़ा तो कहते हैं तीन वेद बना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद इसीलिए है क्योंकि आप संसार को समझ सको। संसार में आप भी आते हो, अपने आप को भी समझ सको। ईश्वर को लगा इसको भी थोड़ा और निचोड़ा जाए, इसका भी और नेक्टर, इसका भी और जूस निकाला जाए, इसको और छोटा किया जाए। तो उन्होंने तीनों वेदों को निचोड़ा तो तीन वाक्य बना, तीन सेंटेंसेस। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ईश्वर ने सोचा कि मैं इसका भी और संक्षेप करूं, इसको भी और मैं समराइज्ड करूं, तो तीन शब्द बनाया, तीन वर्ड्स, भूर भुवः स्वः, जिसे हम व्याहृति कहते हैं। फिर ईश्वर ने सोचा कि मैं इसका भी संक्षिप्तकरण करूं, इसको भी और दृष्ट में लाऊं और सरल बनाऊं, तो उन्होंने तीन अक्षर बनाया, थ्री लेटर्स, अ उ म, दैट इज कॉल्ड ओम। ये उपनिषद की कहानी है, कहानी के पीछे मत भागिएगा, कहानी के पीछे जो रहस्य है उसको समझने की कोशिश करिए। इस रिसर्च में मत लग जाइए कि ईश्वर ने कहा था या नहीं कहा था, नहीं कहा था, पर कहानी है आपके लिए समझाने के लिए। ये मैंने इसीलिए दोबारा बोला कि मत समझिएगा, क्योंकि हमारी एक आदत है, हम कहानी को पीछे रिसर्च करने लग जाते हैं, कहानी के पीछे की मैसेज को हमें कोई जरूरत नहीं सोचते हैं। और हमारे धर्म में यही लड़ाई का कारण है, सारे गड़बड़ी झाला यही पर है, कहानियों को लेकर के बैठे हुए हैं, कहानी के पीछे मैसेज को हमें कोई फर्क, कोई केयर नहीं करते हैं। कहीं गलती से आप इस कहानी में ना चिपक जाए कि ईश्वर ने ऐसा किया, कुछ लोग मान बैठेंगे ईश्वर ने ऐसा किया होगा, कुछ लोग बहस करने लगेंगे ईश्वर कैसे करेगा। तो हमारी समस्या यही है, हम पत्तों पर चिपक जाते हैं, रूट तक जाने की कभी दिमाग लगाते नहीं है। तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, इस स्टोरी के पीछे मत जाइए, ये आख्यायिका है, इसका उद्देश्य है गायत्री मंत्र के, ओम के और व्याहृति के महत्व को बताने की। अगर आपको ओम समझ में आता है तो आपको पूरी दुनिया की अंदर की रचना समझ में आती है, अगर आपको ओम समझ में आता है तो आपको अपने बनावट समझ में आता है, आपका क्या स्ट्रक्चर वो समझ में आता है। तो व्याहृति का यही अर्थ है, जो वेदों से संग्रह करके निचोड़ के बनाया गया, तीन शब्द है, भूः भुवः स्वः। भू का अर्थ होता है संस्कृत में सत्ता, एग्जिस्टेंस। जो लोग संस्कृत क्लास में आते हैं उनको पता है भू धातु का मतलब होता है, भू मीन्स टू बी, होना, एग्जिस्टेंस। तो दुनिया में जो कुछ एग्जिस्ट करता है वो सब भू है, तो भू का रियल मीनिंग हुआ एग्जिस्टेंस। पर भू में तो हम भी सब एग्जिस्ट करते हैं, तो हम भी भू होना चाहिए। हमारी सत्ता क्षणिक होता है, मोमेंटरी है, थोड़ी देर के लिए होता है। थोड़ी देर का मतलब आप कहेंगे हम तो 100 साल जीते हैं, आप थोड़ी देर क्यों कहते हो? आप तो ऐसे कहते हो मानो हम 2 मिनट में, दो सेकेंड में मरने वाले हैं। ऐसा नहीं है, आपका 100 साल भी जब आप इसी पूरे संसार में, यूनिवर्स में टाइम को देखेंगे, आपका 100 साल भी पानी के, एक समुन्द्र के पानी के बूंद से भी छोटा है, रेगिस्तान के एक रेत से भी छोटा है आपका आयु। आपका आयु क्या हो सकता है? इस धरती के आयु भी को अगर आप काउंट करें यूनिवर्स की आयु के साथ, तो भी ये बड़ी छोटी सी आयु है। हमारा जीवन बड़ा छोटा सा आयु है, हमारा एग्जिस्टेंस छोटा सा है। कोई 2000 साल में पैदा हुआ 2070 तक, 80 तक जिंदा रहेगा, चलिए 2021 तक जिंदा रहेगा, 100 साल जिएगा, 2000 पहले उसके एग्जिस्टेंस नहीं था, 2100 साल के बाद उसके एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये धरती है, एक दिन बना, बनने से पहले नहीं था तो नष्ट हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। पर कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा होते हैं, लाखों साल पहले भी थे, लाखों साल जो फ्यूचर में आने वाला तब भी मिलेंगे, जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, उसी को हम कहते हैं भू। परमात्मा इस संसार में एग्जिस्ट करता है, और सेल्फ एग्जिस्टेंट है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी सत्ता के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। हम नहीं होंगे तो भी वो एग्जिस्ट करेगा, हम हैं तो भी एग्जिस्ट करेगा, पर उसके बिना हम नहीं हो सकते। इसीलिए वो भू है, वो सत्ता है, वो परम है। कैसे पता कि आप कहते हो कि ये भू का मतलब एग्जिस्टेंस है? अरे यहां परमात्मा के बारे में बताया गया, ईश्वर के बारे में बताया गया, क्यों नहीं मेरे बारे में बताया गया, क्यों नहीं इस धरती के बारे में बताया गया? हम और आपके बारे में इसीलिए नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दुनिया में एक खास चीज देखी जाती है, एक खास नेचर देखी जाती है इस नेचर में बने हुए हर चीज में। वो है कि जो भी चीज एग्जिस्टेंस में है, जो भी चीज जिंदा है, हर आदमी, आदमी नहीं, हर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मनुष्य जिसके अंदर भी जीवन है, कोई मरना नहीं चाहता है। किसी की आयु 100 साल है तो भी और आयु चाहता है, किसी का आयु 1000 साल है वो भी और आयु चाहता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। और हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी आप और हम करते हैं, अगर आप सबकॉन्शियस में जाकर देखो, एक ही कारण है कि हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक जी सके। और जो अल्टीमेट गोल है कि हम हमेशा के लिए जी सकें, कभी मरे ही नहीं, इसको आप अमृत कहते हो, अमर बन जाए। आप जो कुछ भी करते हो, आप पैसा कमाते हो, बच्चे पालते हो, घर बनाते हो, कुछ भी करते हो, बैकग्राउंड में यही है, सबकॉन्शियस में। क्यों पैसा होर्डिंग करते हैं? इसीलिए कि कल संकट में आए, कल नौकरी चली जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो काम आएगा। जिंदा रहना और स्वस्थ होकर जिंदा रहना, ज्यादातर तक जिंदा रहना। मनुष्य का जो ओवरऑल, मनुष्य नहीं, प्राणी पशु पक्षी किसी के भी लीजिए, क्यों नहीं मरना चाहते? क्यों कोई चाहता है कि मुझे एक ऐसी इमोर्टल लाइफ मिले, एक इटर्नल लाइफ मिले जहां मरने का चांस ना हो? सज्जनों देवियों, दुनिया में जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता, आप सबकॉन्शियसली भी उसको चाह नहीं सकते। कोई भी आप क्या, कोई भी पशु पक्षी भी अनकॉन्शियसली भी किसी चीज को नहीं चाह सकता जिस चीज का कोई एग्जिस्टेंस धरती में ना हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जगे हुए अवस्था में, आप सपने में भी उस चीज की कल्पना नहीं कर सकते जो चीज नहीं होता है, जिस चीज की एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आप कहेंगे हम तो ड्रीम में, हम तो सपने में ऐसा इमेजिन करते हैं कि मेरा पंख लगा है, मैं उड़ रहा हूं, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं, वगैरह वगैरह। सपने में तो आप कुछ भी देख सकते हैं। अब ये भी देखते हैं कि आप अपने सारे दुश्मन को मार चुके हैं, आप पूरे धरती के राजा बन चुके हैं, हर एक का सपना अलग अलग है। आप इवन इमेजिनेशन में भी, आप अपनी ड्रीम स्टेट में भी जो कुछ देखते हैं, वो भी आपके देखे हुए चीजों का एक मिक्सचर है, एक एक्सपेंशन है। आप ऐसा कुछ भी नहीं इमेजिन कर सकते जो आपने नहीं जाना है। देवियों सज्जनों, सिर्फ आप मिला देते हैं, आप उड़ने की सपना इसीलिए देखते हैं क्योंकि पंखों को, चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं। अब आपको लगता है चिड़िया में पंख है तो आपको, आप जागते हुए तो ऐसा नहीं सोच सकते, पर जब आप सपने में होते हैं तो लगता है आपके शरीर में भी पंख लग गया है। अगर घोड़ा उड़ता हुआ आपको सपने में दिखे, सांप बात करते हुए सपने में दिखे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ नॉन एग्जिस्टेंट को इमेजिन किया, नेवर। जो एग्जिस्टेंट है उनको आप मिक्स करते हो और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब हम अगर अनकॉन्शियसली ऐसा चाहते हैं कि हम ना मरे, तो ना ऐसा कोई स्टेट है, ऐसी कोई अवस्था है जहां व्यक्ति मरता नहीं है, ऐसी कोई तत्व है, ऐसा कोई एग्जिस्टेंट है जो हमेशा एग्जिस्ट करता है और हमें उसी को पाना है अनकॉन्शियसली। इवन जो मैटर भी होते हैं इनमें भी ये नेचर दिखता है। पानी को कहीं भी देखिए, आकाश में रहे, पहाड़ पर रहे, कहीं भी रहे, उसका स्वभाव है नीचे की ओर आना। नदी में भी आ जाए वो बहने लगती है, कहां? नीचे की ओर बहती है। उसका बहना बंद कब हो जाता है? जो समंदर में मिल जाता है ना? ऐसे आपका शरीर नष्ट हो जाता है जब हम मर जाते हैं, हमारा शरीर नष्ट। नष्ट होने का क्या मतलब है? शरीर जिन चीजों से बना उन्हीं चीजों में मिक्स हो जाता है, उसकी जॉइनिंग खत्म हो जाती है। आपका शरीर पांच चीजों से बना, जो ठोस चीजें हैं, जो सॉलिड चीजें हैं, वो पृथ्वी में मिल जाती है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ। आपके अंदर जो लिक्विड चीजें हैं वो लिक्विड में मिल जाते हैं, जो हवा वाली चीजें हैं वो हवा में मिल जाते हैं, जो एनर्जी है वो एनर्जी में मिल जाते हैं। आपके पंच तत्वों से बना हुआ शरीर पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। दैट इज द एंड ऑफ द जॉइनिंग ऑफ योर बॉडी। पर आप नहीं मर रहे हैं, आपकी आत्मा चलती रहती है, क्योंकि समथिंग इज देयर विट इज बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ। तो हमारी आत्मा या इस संसार की मूल प्रकृति या परमात्मा, ये सब भू है। भूवः, भूवः संस्कृत पढ़ने वालों को पता है, भूवः अवकल्पने धातु है, सोचना, चिंतन करना, ज्ञान, नॉलेज, कॉग्नाइजिंग समथिंग, नोइंग समथिंग इज कॉल्ड भूवः। ज्ञान अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, कोई कॉज नहीं है, ज्ञान सिम्टम है। जैसे बुखार सिम्टम होता है, ज्ञान सिम्टम है कि अंदर कोई कॉन्शियसनेस है। ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, ज्ञान वही दिखता है जहां कोई कॉन्शियसनेस चेतना होती है। पहाड़ों में कोई ज्ञान नहीं होता है, नदी में ज्ञान नहीं होता है, मिट्टी में ज्ञान नहीं होता, सूरज में ज्ञान नहीं होता है, डेड बॉडी में कोई नॉलेज नहीं होता है। पर पशुओं में, पक्षियों में ज्ञान होता है, इवन पेड़ों में भी ज्ञान होता है। उसकी लिमिटेशन है, वो बहुत लिमिटेड मात्रा में होती है, पर उसमें भी नॉलेज होता है, एहसास होता है। इसका मतलब है कि ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं, वो तो एक सिम्टम है। जानना है ज्ञान कहां से आता है, ज्ञान वही होता है जहां चेतना होती है, चेतना, चैतन्य। भुवा मतलब चैतन्य, चित्त। वो परमात्मा सत भी है, चित भी है। आप कहेंगे क्यों हर बात पर परमात्मा को जोड़ देते हो, हम भी तो चित है। हमारी चेतना क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए होता है, इसीलिए हम महान चेतना को पाने के लिए हमेशा तड़पते हैं। थ्योरी सेम थ्योरी है। दुनिया में कोई भी प्राणी को देखो, इंसान को देखो, कितना भी जान जाए उसको तृप्ति नहीं मिलती है। और सच तो ये, जो व्यक्ति जितना अधिक जानता है उसको उतना ज्यादा ग्लानी है, उतनी ज्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन है कि मैं बहुत कम जानता हूं। ये ध्यान दीजिएगा। ज्ञान पर अकरने वाले लोग वही होते हैं जिनको बहुत कम पता है। कहीं मांग करके थोड़ा सा एक टुकड़ा रसगुल्ला खा लिया, जिंदगी भर ढिंडोरा पिटते हैं, मैं रसगुल्ला जानता हूं कहता हूं। ज्ञानियों के लक्षण यही है, शास्त्रों में भी और हर जगह भी, प्रैक्टिस में भी। ज्ञानी अपने आप को बड़ा मूर्ख समझता है, क्योंकि जो आदमी सचमुच ज्ञान के अंदर घुसता है उसको पता लगता है ज्ञान इतना अनंत है, लिमिटलेस है, इन्फिनिट है। मैं जितना भी जानता हूं वो तो 0.001 के लिए लायक नहीं है। इसीलिए उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं कितना मूर्ख हूं। पर ये रूल उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है जो किराए के लड्डू खा करके लड्डुओं के ज्ञानी बताते हैं। वैसे हमारे शास्त्र में कहता है कि जो लोग कुछ नहीं जानते हैं वो ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहां जो मूर्ख कहा गया उसको नहीं कहा गया जो इग्नोरेंट है। इग्नोरेंस इज नेवर ए बैड थिंग, इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज ए वेरी वेरी बैड थिंग। नॉट नोइंग समथिंग इज नॉट ए बैड थिंग, बट आई डोंट नो दैट आई डोंट नो समथिंग दैट्स ए बैड थिंग। यही आपकी ईगो पैदा करता है, वो भी फॉल्स ईगो। इग्नोरेंस बहुत जरूरी है टू नो समथिंग इज द बेसिक, इग्नोरेंस इज द बेसिक टू बी ए नॉलेजेबल पर्सन। बच्चे इग्नोरेंट होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं, फुलिश नहीं होते हैं, स्टूपिड नहीं होते हैं। और बच्चे एक्सेप्ट करते हैं कि हमें नहीं पता, आप जो बताते हो वो स्वीकार कर लेते हैं, जो समझ में नहीं आता है आपके साथ डिबेट करते हैं, आपके साथ बहस करते हैं, तब तक जब तक वो समझ ना पाए या आप इनको धमका के चुप ना कर दो, वो इग्नोरेंट है। अगर हमारे आप में से कोई इग्नोरेंट है वो अच्छा है, उसका रास्ता खुला है, डोर्स खुले हैं, कभी ना कभी वो समझेगा, कुछ चीजें जानेगा। इसलिए हमारे यहां का इग्नोरेंट होना बेटर है, समझाना उसको आसान होता है। बड़े वाइज मैन होना और अच्छा है, ज्ञानी होना और अच्छा है, उसको समझाना और आसान होता है। पर धरती में अगर कोई मुश्किल चीज है, ये कम पढ़े लिखे कम जानने वाले लोगों को बड़े डेंजरियस होते हैं, है ना। हाफ एजुकेटेड पीपल आर डेंजरियस देन इवन द डेंजरियस फायर। ईगो और एरोगेंसी उनमें ज्यादा फैलती है जो जितने कम एजुकेटेड या हाफ एजुकेटेड या थोड़ा सा एजुकेटेड होते हैं। इसलिए ये नेचर है वाइज मैन का, ज्ञानी का, कि वो अपने आप को कम समझता है। इसीलिए क्योंकि ज्ञान लिमिटलेस होता है, देयर इज नो लिमिट ऑफ नॉलेज, इट्स इन्फिनिट। इसीलिए हर व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए तड़पता है, कितना ज्यादा जानता हो। आप कहेंगे हमारे तो पाने की कोई इच्छा नहीं है, हमने पढ़ाई लिखाई की पैसा कमाने के लिए, पैसा कमा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दैट्स इट। वी डोंट नीड टू लर्न समथिंग मोर, वी डोंट नीड टू नो समथिंग मोर। सो आवर प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज टोटली स्टॉप्ड। तो आप कैसे कहेंगे कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है? आपका अच्छे ज्ञान लेना स्टॉप हो गया, पर आपको ज्ञान लेने का जो नेचर है वो स्टॉप नहीं हुआ। नेबरहुड में झगड़ा होता हो तो आपको जरूर जानने की मन कर गया कि क्या झगड़ा हो रहा है पड़ोसी में। यह अलग बात है कि आपको शास्त्र पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको साइंस समझने में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको पॉलिटिक्स समझने में इंटरेस्ट नहीं होगा, पर रास्ते में गाड़ी चलाकर जा रहे, चार लोग गाली एक दूसरे पर लड़ रहे तो आपका नजर जरूर चला जाता है। ये क्या चीजें हैं? आपकी वो क्यूरियोसिटी जानने की, जिसको आपने जबरदस्ती बाकी जगह से तो बंद कर रखा है पर ये आपकी नेचर है, कहीं ना कहीं दिखता है। चार लोग झगड़ा करते हैं तो भी आपको जानने की जरूरत है, पांच लोग बातें करते हैं आपको ये इच्छा होती है कि वो क्या बात कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये नेचर ऑफ नॉट ह्यूमन बींग, नेचर ऑफ बींग। और ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो उस लिमिटलेसनेस को ना पाले, इंफिनिटी को ना पाले। वो इंफिनिटी कहां है? वो जो इंफिनिटी, द सोर्स ऑफ इंफिनिट नॉलेज, द इंफिनिट इटसेल्फ, दैट इज चित। समय हो चुका है, हमारे बीच में एक अतिथि भी आए हुए हैं, तो अगले बार फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, स्वाहा और गायत्री मंत्र की चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति।